नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। अरुणाचल प्रदेश के जाने माने समाजसेवी तेचू गोविंद को आज नई दिल्ली में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई के जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि पिछले पेपर लीक मामलों से अभी तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिए ऑरेंज एवं अन्य 16 जिलों के लिए गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। दो पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।
आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के जाने माने समाजसेवी तेचू गोविंद को आज नई दिल्ली में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। श्री गोविंद उन 113 विशिष्ट हस्तियों में शामिल है जिन्हें इस वर्ष पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। लोक निर्माण विभाग में सेवानिवृत्त चीफ आर्किटेक्ट रहे श्री गोविंद को लोक सेवा, समाज सेवा और स्वदेशी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। दूरदर्शन पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अब से कुछ ही देर में देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। एक रिपोर्ट।
न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं।
इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी फिजिक्स की लेक्चरर मनीषा संजय हरबलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा सीयूईटी की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा है कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध करने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया है कि पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। विधेयक में यह प्रावधान है कि असम में रहने वाले किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक के पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, वित्तीय और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया।
मुख्यमंत्री की ओर से मैंने आज सदन में यूसीसी पेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि यदि वे सत्ता में आते हैं, यदि एनडीए सत्ता में आता है, तो इसे आज हुए पहले सत्र में ही पेश किया जाएगा।
मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। आज रात पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात का मौसम गर्म रह सकता है। इस बीच आज पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिए ऑरेंज एवं अन्य 16 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर में प्राप्त हो रही है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले दो सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा है कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। सरकार ने नागरिकों को ऐसे भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को भी कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अन्य विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति के हर मौके देंगे। हॉर्मुज जलदमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरूआत से ईरान और अमेरिका एवं इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद हॉर्मुज जलदमरू मध्य बाधित हुआ है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मितेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भारत की तरफ से कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट।
नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की रही है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैक्सन कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।